ये जो दिन है इस दिन सतयुग शुरू हुआ था, जो पिछली बार सतयुग आया था, फिर त्रेता आया, फिर द्वापर आया, फिर कलयुग आया। तो जो सतयुग आया था तो ये वैशाख शुक्ल तृतीया, एक और अक्षय तिथि है, अक्षय नवमी, कार्तिक शुक्ल नवमी। तो कार्तिक के शुक्ल पक्ष की नवमी में जो अक्षय नवमी आती है, तो इसके बाद जो सतयुग आएगा उस दिन शुरू होगा। तो हमारे वर्ष में जो है दो बार अक्षय तिथियां आती हैं, तो दोनों ही पवित्र हैं, बड़ी शक्तिशाली तिथियां हैं। आज की जो तिथि है, आज की तिथि में जो पहले सतयुग आया था पिछली बार, तो वो शुरू हुआ था, और अक्षय नवमी जो आएगी तो उस दिन जो सतयुग आएगा, कलयुग के बाद सतयुग आएगा, तो वो शुरू होगा। तो ये जो दिन है ये बहुत ही विशेष होता है, क्योंकि कलयुग के बाद जब सतयुग शुरू होता है तो बहुत बड़ा परिवर्तन होता है, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। तो वैसे युग परिवर्तन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसे कि सतयुग शुरू होता है तो धर्म के चारों चरण होते हैं, और सतयुग जैसे जैसे चलता जाता है, आगे बढ़ता जाता है, तो धर्म का एक चरण घटता जाता है। और सतयुग जब समाप्त होता है तो सतयुग समाप्त होते होते धर्म का एक चरण समाप्त हो जाता है, और तीन चरण रह जाते हैं। धर्म के चारों चरण होते हैं सतयुग में, कौन कौन से हैं? सत्य नहीं, सत्य, शौच और दया और तप। सत्य, शौच, दया और तप, ये चार चरण होते हैं, है ना। और सतयुग जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है तो जो तपस्या का जो चरण है ये घटता जाता है, और जब सतयुग समाप्त होता है तो धर्म के तीन चरण रह जाते हैं, सत्य, शौच और दया, ठीक है। और आयु भी 100,000 वर्ष की सतयुग में प्रारंभ होती है, और आयु घटते घटते जब सतयुग समाप्त होता है तो आयु 10,000 साल की रह जाती है, और वो जहाँ सतयुग समाप्त होता है उसी बिंदु से त्रेता शुरू होता है। तो कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं है। तो सतयुग जहाँ समाप्त होता है तो मनुष्य की आयु 10,000 साल की हो जाती है, और वही त्रेता युग का प्रारंभ है, तो कोई परिवर्तन नहीं। सतयुग समाप्त होता है तो धर्म के तीन चरण रह जाते हैं, और त्रेता जब शुरू होता है तो धर्म के तीन चरण होते हैं, तो कोई अंतर नहीं। उसी प्रकार से जब त्रेता आगे बढ़ता जाता है तो 10,000 से आयु घटते घटते त्रेता के अंत में मनुष्य की आयु 1,000 साल की रह जाती है। और धर्म के जो तीन चरण हैं उनमें से भी जो दूसरा चरण है वो घटते घटते समाप्त हो जाता है। वो दूसरा चरण कौन सा है? तपस्या तो पहला है, ठीक है। हम अगर उल्टे क्रम से चलें तो सत्य, शौच और दया, तो दया खत्म होती जाती है, और त्रेता के अंत में जो है दया बिल्कुल समाप्त हो जाती है। सत्य और शौच ये दो चरण रह जाते हैं, और आयु 1,000 साल की रह जाती है। अब द्वापर युग शुरू हुआ तो उसी बिंदु से शुरू हुआ, धर्म के दो चरण से शुरू हुआ, सत्य, शौच, और आयु भी मनुष्यों की 1,000 साल की। और जब द्वापर आगे बढ़ता है तो आयु घटती जाती है, और धर्म का जो तीसरा चरण है वो भी घटता जाता है, शौच। और जब द्वापर समाप्त होता है तो धर्म का एक चरण रह जाता है, सत्य, और मनुष्य की आयु 1,000 साल से 100 साल की रह जाती है, ना। तो कोई अंतर नहीं। इसके बाद फिर कलयुग जब शुरू हुआ, जो जहाँ द्वापर समाप्त हुआ वहाँ से कलयुग शुरू हुआ, तो कोई अंतर नहीं है। और कलयुग जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो एक चरण भी जो है घटने लगता है, और कलयुग की समाप्ति में वो चरण समाप्त समाप्त हो जाता है, है? और मनुष्य की आयु भी घटती जाती है, घटते घटते 20 साल की रह जाती है या और भी कम जो भी हो। और अब जिस दिन सतयुग शुरू हुआ, अब सोचिए कितना बड़ा परिवर्तन कि धर्म के जो है चारों चरण यहाँ टूट चुके हैं और अभी धर्म के चारों चरण एकदम से क्या हो गए, स्थापित हो गए, चारों चरण स्थापित हो गए हैं। और मनुष्य की आयु यहाँ 20 साल की थी और आज के दिन से एकदम 1,00,000 साल, तो ये कितना बड़ा परिवर्तन है, बहुत बड़ा परिवर्तन है। तो अक्षय तृतीया जो है एक बहुत बड़ा परिवर्तन है जिसमें कि मतलब व्यक्ति का कितना उत्थान होता है, धर्म का कितना उत्थान होता है, आयु का कितना उत्थान होता है, तो एक ही दिन में जो है कितना बड़ा परिवर्तन है, है ना। तो ये विशेष दिन है। तो भविष्य पुराण में इसके बारे में कुछ मैंने देखा था, तो मैं आपको कुछ इसमें से पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को सुना रहे हैं, श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश गौर नताई जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। तो श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को सुना रहे हैं, तो इसमें बहुत सी तिथियाँ और बहुत से व्रतों का वर्णन है भविष्य पुराण में, और युधिष्ठिर महाराज जी सुन रहे हैं और कृष्ण सुना रहे हैं। तो इसमें बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण बोले महाराज, किससे बोले, युधिष्ठिर महाराज से, महाराज श्री कृष्ण सेवक हैं, सेवक की तरह व्यवहार करते हैं, युधिष्ठिर महाराज को महाराज बोलते हैं। महाराज अब आप वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया की कथा सुने। इस दिन जो भी कर्म किए जाते हैं, स्नान दान जप स्वाध्याय आदि जो भी कर्म किए जाते हैं वे सब अक्षय हो जाते हैं। मत्स्य पुराण, अच्छा इसमें नोट लिखा हुआ है, नीचे का नोट है, मत्स्य पुराण के अध्याय 55 में इसके विषय में एक दूसरी कथा आती है जिसमें कहा गया है इस दिन अक्षत से भगवान विष्णु की पूजा करने से वे विशेष प्रसन्न होते हैं। अक्षया संततिस्तस्य तस्याम सुकृतम अक्षयम् अक्षतः पूज्यते विष्णुस्तेन साक्षिया स्मृता अक्षतस्तु नरास्नाता विष्णुर्दत्त्वा तथाक्षतान। सामान्यतः अक्षत के द्वारा विष्णु पूजन निषिद्ध है, पर केवल इस दिन अक्षत से उनकी पूजा की जाती है, अन्यत्र अक्षत के स्थान पर सफ़ेद तिल का विधान है। तो अक्षत का मतलब काला तिल है ना, तो आज के दिन अक्षत से पूजा की जाती है। खैर हम लोग तो नहीं करते हैं, कलयुग में तो संकीर्तन यज्ञ के द्वारा ही पूजा होती है, लेकिन यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं सतयुग का आरंभ भी इसी तिथि को हुआ था। इसी भविष्य पुराण में अक्षय नवमी की भी बात आती है, तो उसमें ये बताया कि इस कलयुग के अंत में सतयुग प्रारंभ होगा इस तिथि को, इसी में लिखा है कि इस तिथि को सतयुग आरंभ हुआ था। तो जो पहले सतयुग आरंभ हुआ था वो इस तिथि को आरंभ हुआ था, इसलिए इसे सतयुगादि तृतीया भी कहते हैं। ये संपूर्ण पापों का नाश करने वाली एवं सभी सुखों को प्रदान करने वाली है। इस संबंध में एक कथा प्रसिद्ध है, आप उसे सुनिए। साकल नगर में प्रिय और सत्यवादी ब्राह्मणों का पूजक धर्म नाम का एक धर्मात्मा वणिक रहता था। वणिक मतलब व्यापारी, वैश्य, एक वैश्य रहता था। कौन से नगर में रहता था, कौन से नगर में रहता था, साकल नगर में। सब लोग सुन नहीं रहे हैं ध्यान से, सब लोग ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं, सुन रहे हैं है? फुल अटेंशन। तो जब मैंने पूछा तो फिर पता नहीं चल रहा आपका अटेंशन है, तो इसलिए मैं पूछता हूँ। साकल नगर में प्रिय सत्यवादी और ब्राह्मणों का पूजक धर्म नाम का एक धर्मात्मा वणिक रहता था। क्या नाम था उसका, धर्म किस वर्ण का था, वैश्य वर्ण का था। वणिक, वणिक माने व्यापारी, तो व्यापारी था, धर्म नाम का व्यापारी रहता था। उसने एक दिन कथा प्रसंग में सुना यदि वैशाख शुक्ल की तृतीया रोहिणी नक्षत्र और बुधवार से युक्त हो तो उस दिन का दिया हुआ दान अक्षय हो जाता है। अब आज तो बुधवार नहीं है, अगर बुधवार हो तो और ज्यादा उसका फल है, तो उस दिन का दिया हुआ दान अक्षय हो जाता है। ये सुनकर उसने अक्षय तृतीया के दिन घर में आकर के जल और अन्न से पूरा घट सत्तू दही चना गेहूं गुड़ और सोना श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को दान दिया। क्या क्या दान दिया? अन्न जल और अन्न से पूर्व भर के घड़ा दान किया, सत्तू दान किया, आजकल सत्तू भी खाया जाता है, दही और चना और गेहूं और गुड़ और सोना श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को दान दिया। कुटुंब में अशक्त रहने वाली उसकी स्त्री उसे बार बार रोकती थी। स्त्री बोले, अरे क्या कर रहे हो, अरे क्या कर रहे हो, कुटुंब में अशक्त रहने वाली उसकी स्त्री उसे बार बार रोकती थी, किंतु वो अक्षय तृतीया को अवश्य ही दान करता था, वो नहीं सुनता था, वो दान करता था। किसको दान करता था? ब्राह्मणों को, है ना। लेकिन आजकल के वैसे ब्राह्मण नहीं, जो नाम मात्र के, है ना, ये संस्था ब्राह्मण बनाने वाली, हरे कृष्ण आंदोलन के जो ब्राह्मण हैं तो वो दान के पात्र होते हैं। तो ब्राह्मणों को दान देता था, अक्षय तृतीया को अवश्य दान देता था। कुछ समय के बाद उसका देहांत हो गया, अगले जन्म में उसका जन्म द्वारका में हुआ, जहाँ पर आप लोग बैठे हैं। इसमें कुशावती लिखा है, कुशावती नगरी, कुशस्थली बोलते हैं, कुशावती नगरी बोलते हैं। अगला जन्म उसका जो है कुशावती नगरी में हुआ, तो द्वारका में हुआ। तो यहीं की ये लीला है, घटना है, उसका जन्म जो है द्वारका में हुआ। तो आप लोगों ने भी अक्षय तृतीया को दान दिया होगा, तो द्वारका में आए, द्वारका में हुआ, और वह वहाँ का राजा बना, वहाँ का राजा बना। मिल गया और वह वहाँ का राजा बना। दान के प्रभाव से उसके ऐश्वर्य और धन की कोई सीमा नहीं थी। उसने पुनः बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञ किए। अब राजा है तो फिर यज्ञ करेगा। वो ब्राह्मणों को आज के दिन पिछले जन्म की याद भी उसको रही ना, कि पिछले जन्म मैंने क्या किया था, इससे मुझे ये अवसर मिला है। तो पिछले जन्म की याद के कारण उसने पुनः बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञ किए। और दक्षिणा, दक्षिणा दान और दक्षिणा होता है ना, तो ब्राह्मणों को देना। उसने और यज्ञ किए, दक्षिणा वाले, बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञ किए। वो तो ब्राह्मणों को गऊ भूमि सोना आदि देता रहता था, किंतु उसके धन का कभी ह्रास नहीं होता था, धन की कमी नहीं होती थी, उसके धन की कभी कमी नहीं होती थी। महाराज, इस तृतीया का फल अक्षय है। अब इस व्रत का विधान सुने, क्या क्या दान करना है ब्राह्मणों को सुनिए। सभी प्रकार के रस दान कर सकते हो, और अन्न दान कर सकते हो, शहद दान कर सकते हो, जल से भरे घड़े दान कर सकते हो, या बिस्लेरी की बोतल, आजकल जल के घड़े की जगह बिस्लेरी की बोतल दान कर सकते हो। और तरह तरह के फल दान कर सकते हो, और जूता भी, अगर किसी को आवश्यकता है जूते के, तो जूता भी दे सकते हो। और घर गर्मी की ऋतु में उपयुक्त सामग्री और भी कुछ हो जो आजकल आती है, तो वो भी दे सकते हो। और अन्य दान कर सकते हो, गऊ दान, भूमि दान, स्वर्ण दान, वस्त्र दान, जो भी अपने को प्रिय हो, उत्तम लगे, उन्हें ब्राह्मणों को देना चाहिए। ये अतिशय रहस्य की बात मैंने आपको बताई है। कृष्ण कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज, क्या अतिशय रहस्य की बात मैंने आपको बतलाई स्थिति में किए गए कर्म का क्षय नहीं होता है, इसलिए मुनियों ने इसका नाम अक्षय तृतीया रखा है। तो अक्षय तृतीया के बारे में कुछ बातें हैं मैंने बताई हैं। और ये जो अक्षय तृतीया है, तो आज के दिन माधवेंद्रपुरी ने भी चंदन यात्रा शुरू की थी। माधवेंद्रपुरी ने आज के दिन से चंदन यात्रा शुरू की थी, तो आज के दिन वो चंदन तो ले आए थे, नहीं पहले से ले आए थे, चंदन तो पहले से ले आए थे, लेकिन जब स्वप्न मिला उनको गोपाल का कि अब मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, आप जहाँ हैं वहीं चंदन अर्पित करिए, गोपीनाथ जी को चंदन अर्पित करिए, तो माधवेंद्रपुरी ने विचार किया होगा कि किस दिन से शुरू किया जाए और निकट भविष्य में कौन सा पवित्र दिन आने वाला है, तो उन्होंने विचार किया होगा। तो गोपाल जी ने सपना दिया होगा, जब भी सपना दिया हो, क्योंकि उनको तो आगे यात्रा करनी थी, उनको तो गोवर्धन जाना था, रेमुणा से गोवर्धन जाना था, तो चंदन तो उनके पास रखा हुआ था, लेकिन जब गोपाल ने उनको स्वप्न दिया कि अब आप आगे मत बढ़िए, आप जहाँ हैं वहीं से आप उसी स्थान पर गोपीनाथ जी हैं उनको चंदन अर्पित कीजिए, तो उन्होंने विचार किया होगा कि किस दिन से शुरू करना है, है ना, और निकट भविष्य में जो भी पवित्र दिन आ रहा है उस दिन से चंदन की घिसाई प्रारंभ करना है। तो आज के दिन से उन्होंने चंदन की घिसाई प्रारंभ की और अक्षय तृतीया से। हम लोगों का दुनिया में 21 दिन, फिर मैंने विचार किया कि उन्होंने 21 दिन का नियम नहीं बनाया, क्योंकि उनके पास कितना चंदन था, एक मन चंदन था, 21 दिन में एक मन चंदन घिसा नहीं जा सकता। चंदन की एक छोटी सी लकड़ी, इतना टुकड़ा भी घिसते घिसते आप थक जाएंगे और वो घिस नहीं पाएंगे। जो घिसने वाले उनको पता होगा कि दिन भर घिसने में भी कितना चंदन घिस पाते हैं। कई दिनों तक, और कई लोग जब चंदन घिसते हैं तो एक दिन का जो है चंदन तैयार होता है। हमारे ईस्ट ऑफ कैलाश वाले मंदिर में जो भगवान के बड़े अर्चा विग्रह हैं, तो उनके लिए, तो माधवेंद्रपुरी के साथ दो ब्राह्मण थे, उन्होंने कहा था कि दो ब्राह्मण और नियुक्त करिए और पैसा मैं दूंगा, चार ब्राह्मणों को जो है चंदन घिसने में लगाइए। इस प्रकार से चार ब्राह्मण चंदन घिसते थे, तो एक मन चंदन समाप्त होने के लिए कितना दिन लगेगा, इसमें लिखा हुआ है कि जितने दिन लगे वो वहीं रहे। और उनकी चिंता थी कि पूरा का पूरा चंदन गोपीनाथ जी के शरीर में लगाया जाए और कहीं इधर उधर ना जाए, चंदन की लकड़ी आसानी से नहीं मिलती, आजकल तो यहाँ खारी बावली में मिल जाती है, लेकिन उन दिनों कहीं नहीं मिलती थी, और इसलिए गोवर्धन से वो पैदल गए थे जगन्नाथपुरी नीलाचल, वहाँ से लेके आए थे। तो सोचिए चंदन की लकड़ी प्राप्त करना कितना कठिन था, और चंदन की लकड़ी भी ऐसी होनी चाहिए जिससे शीतलता का अनुभव हो, क्योंकि गोपाल को गोपाल की जो गर्मी है वो शांत नहीं हुई। गोपाल जी गोवर्धन के पास झाड़ी में पड़े हुए थे और गर्मी में गर्मी का कष्ट सहन करते थे, तो उनको निकाला गया था, माधवीपुरी ने निकाला था और 108 घड़ों से ठंडे जल से स्नान किया था, स्नान कराया था, है ना। तो ठंडे पानी से स्नान होने से हमारा आपका तो ताप दूर हो जाता है, लेकिन उनका शरीर दूसरे प्रकार का है, तो उनके शरीर का जो ताप है वो उससे दूर नहीं होता है। उनके ताप को दूर करने के लिए चंदन की लकड़ी की आवश्यकता है। भगवान जब बताते हैं जो विधि बताते हैं उसी विधि के द्वारा हमें उनकी सेवा करनी होती है। गोपाल जी ने बताया कि मेरा ताप दूर करने के लिए आपने 108 घड़ों से स्नान कराया है, लेकिन मेरा ताप दूर नहीं हुआ है, आप चंदन की लकड़ी लाइए। और नकली चंदन से ताप दूर नहीं होगा, असली चंदन है। असली चंदन वो है कि जैसे लगाएं तो आपको ठंडक महसूस हो, वो उसकी पहचान है। असली चंदन की पहचान ये है, ठंडक महसूस हो। तो गोपाल जी ने जो है ये सपना दिया था माधवेंद्रपुरी को, और माधवेंद्रपुर और ये भी कहा था कि तुम्हारे सिवा और कोई ये सेवा नहीं कर सकता। उन दिनों यात्रा पैदल होती थी, उन दिनों यात्रा के लिए बस हैं, थ्री व्हीलर ये सब नहीं थे, और प्लेन तो बहुत दूर की बात है, एयरप्लेन की तो बहुत दूर की बात है। और सोचिए कितने दिन लगेंगे, गोवर्धन से जगन्नाथपुरी जाने में कितने दिन लगेंगे। और माधवेंद्रपुरी का जो नियम था वो इतना कठोर था कि वो उसमें तो और ज़्यादा कष्ट है कि माधवेंद्रपुरी जब यात्रा करते थे तो उनका नियम था कि वो अयाचक वृत्ति से रहेंगे। अयाचक का मतलब मांगेंगे नहीं। कोई सन्यासी अयाचक वृत्ति से रहता है और एक स्थान में रहता है तो उस स्थान के आसपास के लोग जान लेते हैं कि भाई ये तो अयाचक वृत्ति से रहते हैं, तो वो खुद ही ला करके खिलाएंगे देंगे। लेकिन अगर यात्रा कर रहा है कोई व्यक्ति तो कौन जानता है कि भाई ये भूखे हैं और मांगते नहीं हैं, कौन समझेगा अयाचक वृत्ति। तो किसी की अगर अयाचक वृत्ति होती है तो फिर वो क्या चाहेगा, वो कहीं नहीं जाना चाहेगा। अयाचक वृत्ति अगर है तो फिर वो जो है अजगर की तरह वो पड़ा रहेगा, उसको अजगर वृत्ति भी बोलते हैं। अजगर वृत्ति अजगर की तरह पड़ा है, एक स्थान में पड़ा है तो लोग जो है खुद ही आएंगे कि भाई ये महाराज मांगते नहीं हैं तो इनको खिलाओ। तो कभी यात्रा नहीं करता कोई अयाचक वृत्ति से, कोई यात्रा नहीं करना चाहेगा। ये तो कृष्ण पर बहुत आश्रित, कोई व्यक्ति बहुत आश्रित हो कृष्ण के ऊपर और शरीर से ऊपर उठा हुआ हो, कई दिन तक भूखे प्यासे हैं तो भी प्रसन्न है, उनका चेहरा एकदम प्रसन्न है, फिर ये नहीं कि अयाचक वृत्ति है तो अपना ली, लेकिन अब जो है मन में गुस्सा आ रहा है कि मैंने क्यों अयाचक वृत्ति अपना ली है, और देखो अब मुझे कोई खिला नहीं रहा है, अब मैं मांग नहीं रहा हूँ, कहाँ फंस गया मैं। तो ऐसा नहीं था, माधवेंद्रपुरी इतने प्रसन्न रहते थे और कृष्ण के स्मरण में इतने प्रसन्न रहते थे कि उनको जो है भूख प्यास का पता ही नहीं चलता था। तो इस तरह से अयाचक वृत्ति से माधवेंद्रपुरी रहते थे, और अभी 2 साल तक तो यहाँ रहे गोपाल जी की सेवा में, तो खूब मतलब भोग लगता था, और भोग लगने के बाद जो दूध का कुछ बना हुआ पदार्थ था वो ले लेते थे तो कुछ मतलब समस्या ही नहीं थी। और माधवेंद्रपुरी के लिए बड़ा अच्छा अवसर था कि अब पूरा जीवन गोपाल की सेवा में लगा दें, तो गोपाल की सेवा करेंगे और कितना भोग बन रहा है और कितना भोग चढ़ाया जा रहा है, और इस तरह से जो है वो बहुत सुरक्षित थे। लेकिन जब गोपाल जी ने कहा कि मेरा ताप दूर नहीं हुआ है और आपके सेवा कोई ये सेवा नहीं कर सकता है चंदन लाने की, है ना, तो इनको ये भार नहीं लगा कि कहाँ से मेरे ऊपर ये भार आ गया, गोपाल जी ने जो है मेरे ऊपर कैसा भार डाल दिया है, अब मुझे जाना पड़ेगा। माधवेंद्रपुरी एक सन्यासी थे, तो अभी तो सन्यासी चप्पल भी पहनते हैं, सिले कपड़े पहनते हैं, सब कुछ, लेकिन पहले जो प्रथा थी वो यही थी, सन्यासी चप्पल भी नहीं पहनेगा, जूते भी नहीं पहनेगा, सिले कपड़े भी नहीं पहनेगा, तो नंगे पैर ही जाना है, और इतनी गर्म है, जमीन उसमें नंगे पैर चलना है, है? और कुछ खाना और पीना नहीं है, अयाचक वृत्ति से रहना है। शायद पानी पी लेते होंगे बिना मांगे, और पानी मिल भी जाता है बिना मांगे तो पानी पीते होंगे, लेकिन भोजन किसी से नहीं मांगे, तो कितना मुश्किल कार्य था। सामान्यतः लोग जब पैदल यात्रा करते थे तो कई दिनों तक उनकी यात्रा होती थी, तो गृहस्थों के लिए ये शास्त्रों में ये विधान था कि अतिथि का सत्कार करना। तो कोई रास्ते में जो यात्री चल रहा है और थका है, उसे कहीं विश्राम करना है, तो किसी घर में अगर वो जो है मांगेगा विश्राम, तो घर वाले जो है जो धार्मिक होते हैं तो वो अतिथि को विश्राम करने के लिए स्थान देते हैं, और अगर भूखा है तो उसको भोजन देते हैं, प्यासा है तो पानी देते हैं। तो प्रत्येक घर में जो है इस प्रकार की व्यवस्था थी, कोई होटल वगैरह नहीं होते थे, हाँ, और गेस्ट हाउस वगैरह नहीं होते थे कहीं, और पैदल चलना है तो माना कई दिनों की यात्रा, अपने साथ इतना भोजन भी नहीं रखा जा सकता, कई दिनों के लिए भोजन भी नहीं रखा जा सकता, तो घरों में इस प्रकार से होता था। अब समय बदल गया है, अब ऐसी आवश्यकता नहीं होती है, सब रास्ते में सब मिल जाता है, होटल भी होते हैं और कई जगह जो है बना बनाया भोजन मिल जाता है, तो पहले ऐसे नहीं होता था। तो किसी भी घर में अतिथि जो है अगर भोजन मांगता है और विश्राम मांगता है तो घर वाले जो है अपना सौभाग्य मान करके उसको देते थे, लेकिन अगर कोई अयाचक वृत्ति से के माध्यम से कोई चल रहे हैं तो ना तो विश्राम मांगेंगे किसी से, ना भोजन मांगेंगे और ना कोई, तो फिर विश्राम के लिए कोई पेड़ मिले तो उसके नीचे ही बैठ करके विश्राम कर सकते हैं, और भोजन भी बिना मांगे कोई दे, कौन देगा, किसको पता। अतिथि तो वो होता है जो किसी के घर में आए तब वो अतिथि कहलाता है, और वो किसी घर में रुकेंगे ही नहीं, मांगेंगे ही नहीं कुछ, तो कौन देगा। तो कितना कठिन था ये कार्य। और गोपाल जी ने आदेश दिया कि मेरा ताप दूर नहीं हुआ है, इस कार्य को आप ही कर सकते हैं, तो बाकी कोई दूसरा व्यक्ति जो अयाचक वृत्ति से नहीं है तो भी वो गोपाल जी के लिए ये कार्य करने के लिए तैयार नहीं है। लोग अपने घर से बाहर निकलते थे लंबी लंबी यात्रा में, तो धन कमाने के लिए निकलते थे कि कुछ धन प्राप्त होगा, तो विदेश में जाते थे, किसी विदेश का मतलब दूर के स्थान में, दूर के स्थान में जाते थे, या राजा के द्वारा भेजे हुए कोई संदेश भाग होते थे वो जाते थे, तो घोड़े की सवारी करके जाते थे, घुड़सवार जाते थे। तो गोपाल जी ने कहा कि आपके सेवा और कोई नहीं है मेरी सेवा करने के लिए, ये चंदन आप ही ला सकते हैं, अगर किसी और व्यक्ति को आदेश दिया जाए तो पहले तो वह कहेगा कि भगवान की मूर्तियों कहाँ गर्मी लगती है, सब कल्पना की बातें हैं, कौन इस चक्कर में पड़े, भगवान को गर्मी लग रही है, भगवान को क्या गर्मी लग रही है, तो कुछ तो उनकी ऐसी श्रद्धा की कमी है, और कुछ आलस्य के कारण भी वो कहेंगे, बहाना बना देंगे, भगवान ने अगर सपना भी दिया है तो सपना भी कितना सच्चा है, कितना सच्चा हो सकता है, भगवान खुद तो नहीं मुझसे बोल रहे हैं, भगवान अगर आदेश दे नहीं चंदन से ही मेरी गर्मी दूर होगी, एसी से नहीं दूर होगी, है ना, तो वो कहेंगे कि नहीं नहीं एसी से काम चल जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं चंदन की, कोई ज़रूरत नहीं, एसी से काम चल जाएगा। तो भगवान ने जब माधवेंद्रपुरी को आदेश दिया है, तो माधवेंद्रपुरी को उत्साह हुआ, बहुत उत्साह हुआ। कैसे उत्साह हुआ? जैसे निर्धन को जो है लाखों रुपए का अचानक लाभ हो जाए, या भूखे को जैसे बड़े 56 भोग की थाली मिल जाए, ऐसे इनको उत्साह हुआ कि मुझे गोपाल जी ने सेवा दी, ऐसा उत्साह हुआ। उनको ये चिंता नहीं कि मेरी अयाचक वृत्ति है तो मैं जब जाऊंगा तो कहाँ कौन मुझे खिलाएगा, क्या करेंगे, उनको ये चिंता नहीं थी। तो इस तरह से उन्होंने यात्रा की, उन्होंने पैदल यात्रा की। इसमें लिखा है मध्य लीला, चैतन्य चरित मध्य लीला अध्याय 4 पयार संख्या 105 है। इस प्रकार 2 वर्षों तक मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा अत्यंत ऐश्वर्य के साथ चलती रही। तब एक दिन माधवेंद्रपुरी ने एक सपना देखा। यही मत वत्सर दोई करीला सेवन, एक दिन पूरी गोसाई देखीला स्वपन। स्वप्न में माधवेंद्रपुरी ने देखा कि गोपाल कह रहे हैं मेरे शरीर का ताप अभी भी कम नहीं हुआ है, तुम मलय प्रदेश से चंदन लाओ और मुझे शीतल बनाने के लिए मेरे शरीर पर इसका लेप करो। गोपाल कहे पुरी अमार ताप नहीं जाए, मलय जय चंदन लेप तबे से जुड़ाए। तुम जगन्नाथपुरी से चंदन लाओ, कृपया तुरंत जाओ, चूंकि ये काम कोई और नहीं कर सकता इसलिए तुम ही करो। भगवान कह रहे हैं मलयज आन जाया नीला चल हैते अन्य हैते नहीं तुम ही चला त्वरिते। भगवान कह रहे हैं और कोई नहीं कर सकता ये कार्य। इस स्वप्न को देखकर माधवेंद्रपुरी भगवत प्रेम के भाव के कारण बहुत प्रसन्न हुए और भगवान के आदेश का पालन करने के लिए बंगाल जाने के लिए पूर्व की ओर चल पड़े। तो बंगाल से होकर के उड़ीसा जाते हैं क्या, कुछ ऐसी रास्ता होगा, उड़ीसा में जाना है तो बंगाल से होकर के, तो बंगाल जाने के लिए पूर्व की ओर चल पड़े, उड़ीसा पूर्व दिशा में। स्वप्न देखी पूरे गोसाई हैला प्रेमावेश प्रभु आज्ञा पाली बारे गेला पूर्व देश। तो इसमें क्या बताया गया है, स्वप्न देखी हैला प्रेमावेश, प्रेम का आवेश हो गया, प्रेम का आवेश हो गया उनको, स्वप्न देख करके उनको प्रेम का आवेश हो गया। कैसे प्रेम का आवेश हो गया, कि गोपाल जी मेरी सेवा को स्वीकार कर रहे हैं। इस स्वप्न के द्वारा माधवेंद्रपुरी को इस बात का भी पता चला कि मैं जो सेवा कर रहा हूं वो स्वीकार कर रहे हैं। अगर आप किसी की सेवा कर रहे हैं और वो आपसे कुछ बात नहीं करता है, तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि क्या सेवा, वो मेरी सेवा मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं, है ना। लेकिन आप किसी का मान लीजिए हाथ दबाते हैं तो फिर वो कहता नहीं ऐसे नहीं ऐसे दबाओ, ऐसे नहीं ऐसे दबाओ, तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये सेवा करा रहे हैं मेरी, है कि नहीं। उसी प्रकार से भगवान ने जब माधवेंद्रपुरी की सेवा को स्वीकार किया तो फिर तो डायरेक्शन भी दिया कुछ कि ऐसे नहीं ऐसे, है ना। तो कोई सेवा अगर कराता है तो जरूर कहेगा कि ऐसे नहीं ऐसे। तो भगवान ने जो है उनको कहा क्या कहा कि मेरा ताप दूर नहीं गया, मेरा ताप दूर नहीं हुआ, है ना। तो 2 साल के बाद उनको सपना आया कि मेरा ताप दूर नहीं हुआ है। इस स्वप्न को देख करके प्रेम का आवेश हुआ, माधवेंद्रपुरी को प्रेम का आवेश हुआ, है ना। तो प्रेम का आवेश मतलब इस करंट, करंट बोलते हैं ना आवेश को, करंट बोलते हैं। तो प्रेम की करंट आ गई, है ना। जैसे तांबे के तार में करंट आती है, आवेश होता है, तो अब तांबे का तार नहीं है, आप छुएंगे तो झटका देगा, तो विद्युत हो गया, है ना। उसी प्रकार से माधवेंद्रपुरी के शरीर में प्रेम का आवेश हो गया। अब उनका जो शरीर है ये भौतिक शरीर नहीं है बल्कि क्या हो गया है, ये प्रेम का ही शरीर बन गया, प्रेम मूर्ति। जैसे प्रभुपाद को कृष्ण कृपा मूर्ति, कृपा का आवेश है, तो पूरा शरीर उनका कृपा कृपा मूर्ति है, कृष्ण कृपा मूर्ति। ऐसे कृष्ण प्रेम का आवेश माधवीपुरी को, तो कृष्ण प्रेम की मूर्ति हो गए, कृष्ण प्रेम मूर्ति माधवीपुरी है ना। तांबे के तार में जब विद्युत आती है, प्रवाह होती है, तो विद्युत हो जाता है। अब ये बिजली है, अब तांबे का तार नहीं है। जैसे लोहा, लोहे की छड़ है, आग में डाली, अब लाल हो गई, अब ये लोहे का काम नहीं करेगा, आग का काम करेगा। उसी प्रकार से उनके शरीर में जब प्रेम का आवेश हुआ, तो अब शरीर जो है उनका ये भौतिक शरीर नहीं रहा, क्या हो गया है, प्रेम, हाँ प्रेम का ही मतलब शरीर हो गया है ना। तो ये प्रेम मूर्ति कहेंगे, कृष्ण प्रेम मूर्ति, प्रेम आवेश। और प्रभु आ गया पाली बारे गेला पूर्व देश। चलने के पूर्व माधवेंद्रपुरी ने नियमित सेवा पूजा के लिए सारी व्यवस्था कर दी और उन्होंने विभिन्न लोगों को विभिन्न कार्यों में लगा दिया। फिर गोपाल की आज्ञा लेकर वे बंगाल के लिए चल पड़े। तो माधवेंद्रपुरी अब छोड़ के जा रहे हैं गोपाल जी को, तो उनकी चिंता है कि मैं नहीं रहूँगा तो सेवा कैसे होगी। तो उन्होंने उन भक्तों से मीटिंग करी और दिन भर की सेवा भी सौंपी कि क्या क्या करना है। ऐसे बताया गया कि पहले से दो ब्राह्मण आ गए थे उनके पास बंगाल से, जो कि उनके आदेश के अनुसार कार्य कर रहे थे। तो इस प्रकार से माधवेंद्रपुरी ने उनको जो है सेवा में लगाया। अगर वो सेवा में ना लगाएं तो वो जाएंगे, यात्रा में जाएंगे, लेकिन दिमाग में क्या भार रहेगा कि गोपाल की सेवा नहीं हो रही है ना। तो एक बहुत बड़ा जो है उनके ऊपर भार रहेगा। फिर उन्होंने अपना सब भार उतार दिया, सब भार सौंप दिया, और जो ब्राह्मण पहले से सेवा कर रहे थे गोपाल जी की, तो उनका कार्य उन्होंने देखा भी था कि ये करते हैं और पूरे मनोयोग से करते हैं, तो माधवेंद्रपुरी ने उनको जो है सेवा का भार सौंपा। इसके बाद माधवेंद्रपुरी शांतिपुर में अद्वैत आचार्य के घर पहुँचे, तो माधवेंद्रपुरी में भगवत प्रेम को देख करके आचार्य बहुत हर्षित हुए। तो शांतिपुर रास्ते में पड़ा, शांतिपुर बंगाल में है, मायापुर के पास में, तो ये भी रास्ते में पड़ा शांतिपुर। शांतिपुर आइला अद्वैताचार्य रे घरे, पूरी रे प्रेम देखी आचार्य आनंद अंतरे। अद्वैताचार्य ने माधवेंद्रपुरी से दीक्षा देने की प्रार्थना की। उन्हें दीक्षा देने के बाद माधवेंद्रपुरी दक्षिण भारत के लिए चल पड़े। तारठाई मंत्र लैला जतन करिया, चलीला दक्षिण पूरी तारे दीक्षा दिया। इस समय माधवीपुरी से अद्वैताचार्य ने दीक्षा ली, माधवीपुरी के शिष्य हैं अद्वैताचार्य। तो ये घटना उस समय की है जब श्री चैतन्य का जन्म भी नहीं हुआ था, है ना। माधवेंद्रपुरी जब 52 वर्ष के थे तब श्री चैतन्य का जन्म हुआ, तो उससे पहले की घटना है। माधवीपुरी यहाँ पर ठहरे थे। तो ये बहुत लंबी कथा है, तो आज तो मैंने सोचा था कि इसमें से कुछ हिस्सा सुनाऊं, लेकिन अब तो समय नहीं है हमारे पास में। तो आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूं?
जो नाथ द्वारा में जो श्रीनाथ जी हैं, ये वही गोपाल जी हैं, तो वहाँ पे जो नाथ द्वारा में जो भक्त हैं, वही गोपाल जी हैं, तो वहाँ पे जो नाथ द्वारा में जो भक्त हैं, वो इस कथा से सम्मान
हाँ, इस विषय में मैंने भी बहुत विचार किया और कुछ और पता लगाए, और हमारे साथ जो भगवान लीलाएं करते हैं, तो उन लीलाओं से भी संकेत मिला कि जो गोपाल वहाँ पर हैं गोवर्धन में, गोविंद कुंड में गोपाल हैं, तो ये वही हैं गोपाल जी, ये कहीं नहीं गए। श्रीनाथ जी का जो इतिहास है वो बिल्कुल अलग ही है, श्रृंगार मंडल से, गोवर्धन से, वो कलयुग के 4500 वर्ष के बाद वो प्रकट होंगे। तो गर्ग सीता में जो लिखा हुआ है, तो वो श्रीनाथ जी अलग ही हैं, और उनके बारे में ये बताया गया है कि उनको किसी ने बनाया नहीं, कोई ऐसा इतिहास नहीं कि किसने बनाया, लेकिन ये जो गोपाल जी हैं इन्होंने तो बताया माधवेंद्रपुरी को कि मुझे बजनाभ ने स्थापना की थी। लेकिन श्रीनाथ जी का भी जो अर्चा विग्रह है वो इसी प्रकार का है, और गोपाल का भी अर्चा विग्रह इसी प्रकार का है, तो इसलिए एक भ्रांति मतलब ये हो गई कि ये वहाँ चले गए, नाथद्वारा में चले गए। और ये भ्रांति वहाँ के निवासियों में भी है जहाँ हम लोग गए थे, लेकिन जो पुजारी हैं, जो गोपाल के पुजारी हैं, तो उन्होंने बताया कि नहीं, ये वही हैं माधवीपुरी के ही गोपाल जी हैं, उन्होंने बताया कि वही हैं गोपाल जी। लेकिन वहाँ के जो निवासी हैं वो मतलब इस अंतर को नहीं समझ पाते, तो हम लोग भी यही समझ रहे हैं, या प्रभुपाद ने भी यही कहा, तो लेकिन ये पहले से ही इस प्रकार का जो है ये चला आ रहा है। तो गोपाल जी की कथा जब मैं पढ़ के सुना रहा था, तो ये लीला गोपाल जी की जो लीला है वो हुई थी छिप्पीबाड़ा मंदिर में, कि जब हमने गोपाल जी की कथा सुनाई तो उस प्रकार की घटनाएं हुई थी जो माधवेंद्रपुरी के समय में गोपाल जी ने बताया कि मैं गर्मी का कष्ट भोग रहा हूँ, वर्षा का कष्ट, आंधी का कष्ट भोग रहा हूँ। तो उस दिन वर्षा आंधी हुई थी जब छिप्पीबाड़ा मंदिर में हमने ये कथा सुनाई थी। अब ये कथा जो है मैं जब सुना रहा था वहाँ, जब जा रहे थे हम गोपाल जी का दर्शन करने के लिए गोविंद कुंड, तो कथा का जो क्रम था उस कथा के क्रम में अलग अलग लीलाएँ मैं सुना रहा था। तो जब हम वहाँ पहुँचे, गोपाल जी के मंदिर पहुँचे, तो उस समय वही कथा निकली जो गोपाल जी की जो लीला जो हुई थी छिप्पीबाड़ा मंदिर में हुई थी, वही कथा निकली। इससे भी संकेत मिला कि हम गोपाल जी की अर्चा विग्रह के सामने जब आए तो वो कथा निकली। तो अब लोग सोच रहे हैं कि प्रतिभू मूर्ति हैं, गोपाल जी की प्रतिभू मूर्ति हैं, लेकिन ये प्रतिभू मूर्ति नहीं है। अभी तो यही मान्यता है कि गोपाल जी जो माधवीपुरी के गोपाल जी हैं वो नाथद्वारा में सीना जी के रूप में यहाँ पर प्रतिभू मूर्ति की स्थापना हुई है, लेकिन प्रतिभू मूर्ति नहीं है। जो पुजारी हैं उनके जो परंपरा में जो मतलब पुजारियों की परंपरा है, तो वो बता रहे हैं कि नहीं ये वही हैं गोपाल जी, कोई मतलब कहीं नहीं गए गोपाल जी। और ये गोपाल जी छोटे हैं और श्रीनाथ जी बड़े हैं। तो श्रीनाथ जी के बारे में गर्ग सीता में जो लिखा है और उसका समय भी बताया गया कि वो समय कौन सा है, 4500 वर्ष कलयुग के जब होंगे तब वो प्रकट होंगे, गोवर्धन के श्रृंगार मंडल से प्रकट होंगे। तो बहुत से मतलब ऐसे कारण मिलते हैं जिससे पता चलता है कि अभी गोविंद कुंड में जो गोपाल जी हैं वो वही हैं गोपाल जी, माधवीपुरी के ही गोपाल जी हैं। तो ये जो बातें हैं, हाँ जी आप भी हैंड माइक।
जैसे इसमें जो आदेश दिया कि चंदन लेके आओ, तो उन्होंने इसको खुशी से स्वीकार किया। जैसे हम लोगों के साथ अपने साथ अगर कहीं कोई सेवा बताई जाती है तो भारत महसूस होता है, गुस्सा आता है, तो इस चीज को हम कैसे
इसको भी जो है भगवान इसमें भी बहुत उदार हैं, भगवान बहुत उदार हैं। भगवान जो है जानते हैं कि आपके अंदर ईर्ष्या की भावना है, आपके अंदर ईर्ष्या है और जन्म जन्म से ईर्ष्या है, वो पली है, तो एक रोग है, एक बीमारी है, लेकिन फिर भी आप इस बीमारी को दूर करने के लिए आए हैं और आप भक्तों के संग में आए हैं और आप देख रहे हैं कि जो दूसरे भक्त हैं उनकी जो बीमारी है वो कम हुई है और आप भी अपनी बीमारी को कम करना चाहते हैं, है ना। तो भगवान इस भाव को भी स्वीकार करते हैं कि आपके अंदर अगर कुछ सेवा का भार भी महसूस होता है और कुछ दुर्भावना भी पैदा होती है भगवान के प्रति, लेकिन आप मुँह से अगर नहीं बोलते हैं, निंदा नहीं करते, किसी वैष्णव की निंदा नहीं करते, तो भगवान जो है आपकी इस सेवा को फिर भी स्वीकार करेंगे। किसी वैष्णव के प्रति भी ईर्ष्या की भावना होती है आपके अंदर, तो वो भी जो है मन में अगर आई ऐसी दुर्भावना तो कलयुग में वो नहीं मानी जाती, उसका दंड नहीं मिलता है। जब तक कि आप वाणी से कुछ अपराध नहीं करते हैं या शरीर से अपराध नहीं करते हैं, तो मन के द्वारा किया हुआ जो पाप है वो क्षमा है। ये मन के द्वारा अपराध क्षमा नहीं है, आपने मन से अपराध कर दिया तो वो क्षमा नहीं है। मन में अगर ऐसा विचार आया, ईर्ष्या की भावना आई, तो वो पाप है, वो क्षमा है। ये मन के द्वारा अपराध आप जानबूझ के मन का अपराध करते हैं, तो मन के द्वारा अपराध क्या करते हैं, आदेश मिला आपने आदेश का पालन नहीं किया तो क्या हुआ, मन का अपराध हुआ है। या आपने गलत तरीके से आप देखते हैं भगवान की तरफ या भक्तों की तरफ गलत तरीके से गुस्सा दिखाते हैं, तो वो मन का अपराध हो जाता है। जब आप अपनी भावना जो दुर्भावना है उसको आप दूसरे तक जाहिर करते हैं, प्रकट करते हैं, तो मन का अपराध होता है। और एक मन के अंदर दुर्भावना आई है और आप मन में ही उसको आप उस संघर्ष करते हैं उसको दूर करने की, तो वो फिर आपका जो अपराध नहीं बनता। मन के अंदर कुछ दुर्भावना आई और जो है आप बुद्धि के द्वारा उस अपने मन को आप जो है बस में करते हैं या मन का समन करते हैं, मन से आप लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, तो इस प्रकार का जो संघर्ष है जो आपका है, तो वो जो है आपके उस पाप को दूर कर देता है। लेकिन मन में आप रखते हैं दुर्भावना और फिर वही दुर्भावना आप फिर मन के द्वारा प्रकट भी करते हैं, अपने चेहरे के भाव से प्रकट करते हैं, है ना, या किसी बात का उत्तर नहीं देते, जवाब नहीं देते हैं, तो वो जो है फिर मन का अपराध हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका जो संघर्ष है कि आपके मन में है ईर्ष्या है, दुर्भावना है, हैं, तो भगवान देखते हैं, जानते हैं, लेकिन आप उसको दूर करना चाहते हैं, आप कितना उसको दूर करने के लिए उत्सुक हैं, तो वही भगवान देखते हैं। इस तरह से भगवान आपकी सेवा स्वीकार करते हैं, ठीक है। हाँ जी, हैंड माइक दीजिए। आज के दिन महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, आज के दिन नहीं, क्योंकि मोक्षदायक एकादशी के दिन महाभारत का युद्ध शुरू हुआ, गीता का भगवान ने उपदेश दिया, तो उसके 18वें दिन में महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, ठीक है ना। तो वो नहीं, वो मान्यता नहीं है, ठीक है ना। और कोई उसके बाद रुचि सेवन। हाँ,
मेरा प्रश्न छोटा सा है, क्या रामायण में जो राम थे,
नहीं नहीं,
कृष्ण भी वही है?
अभी ये विषय नहीं है, क्योंकि आप कोई प्रश्न करते हैं तो इससे ये पता चलता है आपने सुना ही नहीं, जो हमने जो प्रवचन दिया है उस पर आपने कुछ सुना नहीं, विचार नहीं किया, इसलिए ज़्यादा अच्छा ये है कि अभी ऐसा प्रश्न ना करें। वैसे अच्छा है, मैं तो वो भी चाहता हूँ, लेकिन साथ ही ये है कि अभी जो चर्चा हुई है इस विषय में आप करें तो पता चलता है कि हाँ आपने सुना है, मनन किया है, मंथन किया है, ठीक है। हाँ, आप
जैसे स्टार्टिंग में आपने बताया था कि
हैंड माइक दे दो, हैंड माइक।
जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि आप वो चीजें कैसे काम कर सकते हैं इस प्रकार से, तो अपने लिए कैसे दे सकते हैं 21 दिनों में अध्यात्मिक कार्य में क्या क्या चीजें हैं जिसमें आप विशेष ध्यान दे सकते हैं तो आगे बढ़ते हैं?
नहीं, इसमें ये बताइए, जो भी आप आध्यात्मिक कार्य करते हैं तो रोज़ का भी जो आप कार्य करते हैं, मंगल आरती में जप करना है, अध्ययन करना है, आप जो कुछ भी कर रहे हैं तो आज के दिन आप विशेष उसको करिए, अक्षय तृतीया, आज के दिन विशेष रूप से, आज के दिन आप विशेष रूप से जो भी आप कार्य करते हैं और अच्छी प्रकार से करिए और उसका जो है आपको फल मिलेगा, विशेष फल मिलेगा। आज के ही दिन माँ गंगा का अवतरण धरती पर हुआ था, नहीं वो भी सही नहीं, महर्षि परशुराम का जन्म आज के दिन हुआ था, इस विषय में कह नहीं सकता हूँ। परशुराम जी का माँ अन्नपूर्णा का जन्म भी आज के दिन हुआ, द्रौपदी को चीरहरण से कृष्ण ने आज के ही दिन बचाया था, द्रौपदी चीरहरण वो विचार करना पड़ेगा, द्रौपदी चीरहरण ये हो सकता है। क्या हो गया? कृष्ण और सुदामा का मिलन आज के ही दिन हुआ था, इसमें से हम क्या कह नहीं सकते। लेकिन बात यह है ना कि ये सब, ये जो सब बातें हैं तो ये किसी ने अगर लिखी हैं तो उनका कोई आधार नहीं बताया कि आपको ये सोचना है किस आधार पर प्राप्त हुई। तो अगर अपनी कल्पना से कोई व्यक्ति लिख रहा है तो फिर तो जरूरत ही नहीं कि भाई क्या है, जब तक तो कोई आधार ना हो तब तक हमें कोई बात स्वीकार नहीं करना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। श्री अक्षय तृतीया महामहोत्सव की, श्री चंदन यात्रा महामहोत्सव की, जगतगुरु शिला प्रभुपाद की, श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव गौर निताई की जय।